अब क्यों घंटी बजाए?
मैं कहा भाई आपके लिए, आपके पति के लिए घंटी बजाए कि वो घर में है तो है, क्या बात है? आप लोग आदमी नहीं है? मैं कहा आदमी नहीं होते तो घंटी कैसे बजाते? तो आदमी है इसीलिए घंटी बजाए, फिर बंद करके चले गए तो फिर हम घंटी दबाए। तो इसके बाद उसका पति आ गया, वो खूब क्रोध में बड़बड़ा रहा था, खूब बड़बड़ा रहा। हमने कहा कि देखिए हमको आपसे और कोई काम नहीं, हमको यही पूछना है कि आप हम पर क्रोध क्यों कर रहे हैं, हम केवल यही जानना चाहते हैं और यही जानने के लिए हम बार बार घंटी बजा रहे हैं कि आप केवल दो मिनट हमारे साथ बैठिए और ये बताइए कि हमारे प्रति जो आपका क्रोध है इसका कारण क्या है। हम तो बहुत अपने को फीका अनुभव कर रहे हैं कि हमसे प्रेम करने वाले आदमी नहीं है, आप हमसे क्यों घृणा किए? हम आपके यहां आए, एक आप आदमी हैं, हम भी आदमी हैं, ऐसा क्रोध नहीं किए होते तो हम चले गए होते, लेकिन अब हमें जिज्ञासा हो गई है कि आपके क्रोध का कारण क्या है। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करना है, आप लोग जाइए जाइए जाइए। मैं कहा आप, मैं जानता हूं आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन यही मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों बात नहीं करना चाहते। अब वो फिर बंद करके चला गया, तो फिर मैं दबाया घंटी। इसके बाद फिर बड़बड़ाता हुआ आया और मैं बार बार शांति पूर्वक कह रहा था, मेरे मन में तो था लाइव मेहर बनाने की वास्ते, तो मैं कह रहा था कि आप क्यों नहीं बात करना चाहते, केवल यही बता दीजिए, चाहे यहां खड़े होकर के चाहे भीतर। तो कहता ठीक है चलिए भीतर। तो अब हम लोग आश्वस्त हुए ठीक है अब तो ये बनेंगे ही। तो भीतर गए, बातचीत करने लगे। मैं कहा कि हम लोग रोज घूमते हैं इस तरह से, लेकिन प्रथम बार आप जैसे व्यक्ति मिले, हम अपने दोष दृष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आप हम में कौन दोष देखे कृपया बताइए कि आप हमसे इस तरह क्रोध से बोले, हम आपके घर पर आए और आप ऐसे डांट रहे, हमने क्या अपराध किया? अपराध नहीं, ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं ये, हम सोचे आप पैसे के फेरे में आए हैं। मैं कहा पैसे के फेरे में बिल्कुल नहीं आया, आप इस एकदम निश्चिंत हो जाइए, मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं मुझे तो जिज्ञासा हुई आप बताइए आप क्यों क्रोध किए हम पर व्यक्तिगत। तो कहा नहीं नहीं मेरा क्रोध नहीं है, धीरे धीरे शांत होने लगा, क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है। तो हम बताने लेकिन बताए कि देखिए हम लोगों का कार्य है, हम लोग भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि घर घर में जाकर के भगवान का नाम सुनाओ, तो हम तो आए थे आपको भगवान का नाम सुनाने के लिए, कुछ बात कहने के लिए, और आप इसी पर क्रोधित हो गए, हमने क्या अपराध किया था आपका, कुछ आपके साथ मुकदमा चल रहा है क्या हो रहा, हमने क्या किया था कि आप इतना क्रोधित हो गए? अरे नहीं क्रोधित नहीं कुछ नहीं, ठीक है मेरा दिमाग काम नहीं किया। अच्छा आप खाएंगे पियेंगे? तो पानी आया, इसके बाद फल काट करके आया, इसके बाद कहे कि स्वामी क्षमा कीजिए आपकी मैं क्या सेवा करूं। मैं कहा कुछ भी नहीं, मेरे मन में था कि ये मेंबर बन जाए, लेकिन मैं कहा कि मैं कुछ भी नहीं, अब मुझे संतोष हो गया कि आप क्यों क्रोधित हुए, जब कुछ बताया नहीं हो। तो हम लोग जा रहे हैं तो कहा नहीं नहीं रुकिए 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 रुकिए। तो अपनी औरत से वो चेक बुक मांगा, और उस समय 1978 की बात, 11,000 रुपया दिया मंदिर के लिए चेक बुक काट कर। तो हम लोग तो लिए, हम लोगों का तो मनोरथ सिद्ध हो गया, चले। अब भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ भेंट होती है तो बहुत हंसते हैं, अब तो वो मंदिर के भक्त हो गए, गोपाल कृष्ण महाराज के दीक्षित शिष्य भी हैं, अब वो ठीक हो गए। मैं ये कह रहा था कि इस तरह धन में रहने वाला आदमी बात तक नहीं सुनना चाहता, ये नहीं बस बंद करो बंद करो बात मत करो। एक आदमी है कि दरवाजे पर भीख मांगता हुआ जा रहा है, कोई एक पैसा दे दे दो पैसा दे दे, और दूसरा आदमी देखना नहीं चाहता, उसे बात नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो भीखमंगों को देते भी हैं, 4 आना 8 आना 1 रुपया देते हैं, तो दे करके सुंदर वचन नहीं बोलते हैं, दे करके कहते जाओ। है लगता है कि उनकी पूरी कार ही अबुर लेने वाला है, इसलिए भगाते हैं जाओ। पर तो जाने के लिए जाएगा ही, थोड़ा मधुर वचन बोलो, ठीक से बोलो। कुंती महारानी का अनुभव है कि धन के घमंड में रहने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता। चार चीज को भक्ति में बाधक बता रही हूं, कुछ कुल में जन्म और धन, शारीरिक सौंदर्य और विद्या। हम तो देख रहे हैं कि यहां भागवत सुनने वाले अधिकांश लोग कोई कंप्लीट पढ़ाई किए हुए नहीं, कहीं से छोड़ा कोई, कहीं से छोड़ा। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बाकी तो हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई छोड़ छाड़ करके, अब तजी हरि भजन काज नहीं दूब जाए। भगवान का भजन छोड़कर दूसरा काम ही नहीं है, और दूसरे लोगों को संसार के काम से फुर्सत ही नहीं है भजन करने, दोनों में बहुत अंतर हो गया। कुछ लोग इस भागवत में आए हैं कहां कहां से अपना घर छोड़ करके, और कुछ लोग यहीं अपना घर छोड़कर नहीं आ रहे, कुछ लोग क्या सभी लोग, ये इसमें कारण क्या है? कारण चारों में कोई न कोई है। धन कमाने के लिए अपनी दुकान में खड़े हैं तो ऐसा थोड़े है कि मर रहे हैं, दो दिन दुकान बंद कर देंगे तो धन नहीं रहेगा। ज्यादा धन है इसलिए धन हानि नहीं सही जाती है। जिसके दुकान में प्रतिदिन कई हजार की आमदनी है वो तो दुकान बंद कर नहीं सकता, जिसके दुकान में दो चार रुपए की या 150 की रोज आमदनी होगी वो बंद कर देगा। ठीक है कोई बात नहीं, दो चार दिन सुन लेते हैं, ये सोचेगा। ऐसा होता है प्राय, तो धन संपत्ति भगवान के भजन में बहुत बाधक, इसलिए कुंती महारानी विपत्ति मांग रही, संकट मांग रही, उसमें भगवान का दर्शन होता है, स्मरण होता है। हरे कृष्ण जय श्री प्रभु।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरकृषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्ने त्वाम कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिथः कलिः। न वेद कश्चिद् भगवं चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न जस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्याश्च जस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः त्रियं ऋषिशुजादहसु तदत्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षाम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माम् विमोहयति भीरपि यद्विभेति केचिदाहुरजम् जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये जदोः प्रियस्यान्वाये जदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्याम् याचितोऽभ्यगात् अजस्तमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम् भारावतरणायान्ये भुवो नावैवो दधौ शिदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणाहणि करिष्यन्ति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितम् जनः त एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमम् पदाम्बुजम् मैं नमस्कार करते हूँ अकिंचन वित्ताया अकिंचन भक्त जिनके सर्वस्व हैं उनको आपको निवृत्त गुण वृत्तये धर्म अर्थ काम विषयक गुण वृत्तियां जिनसे निवृत्त हैं उनको आपको आत्मा रामाया जो अपने स्वरूप में रमते हैं उनको प्रतिदिन कौन पे करता है लाकर मायापुर जैसा रिक्शा बोलता है ऐसे आए आत्मा रामाय जो अपने स्वरूप में रमते हैं ऐसे आपको शांताय रागादि दोष से शून्य आपको कैवल्य पतये कैवल्य के दाता आपको प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय पुनः प्रणमति। प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय, महारानी कुंती का मनोरथ था कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें सदा विपत्तियों में रखें और दर्शन देते रहे। तो उसी मनोरथ की पूर्ति के लिए बारंबार कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं, कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हुए। अकिंचन वित्त निवृत्त गुण वृत्ति आत्मा राम शांत कैवल्यपति, ये भगवान के गुण हैं। सबसे पहले भगवान के गुण को गीता गिना रही हैं। अकिंचन वित्त, वित्त का अर्थ होता है धन, सर्वस्व। वित्त को आदमी बहुत सुरक्षित रखता है। इस संसार में धन बहुत प्रिय पदार्थ है सबके लिए, है ना? बहुत प्रिय, प्रिय वस्तुओं में धन है प्रियतम है। देह भी उतना प्रिय नहीं होता है जितना धन प्रिय होता है। चमड़ी जाए पर जाए, पर दमड़ी ना जाए से कहते हैं। कुछ लोगों को तो अपना शरीर दे देंगे लेकिन धन नहीं दे सकते, इतना प्रिय, इतना धन प्रिय होता है। भगवान के लिए सबसे प्रिय पदार्थ कौन है इस जगत में? अकिंचन भक्त। अकिंचन, अ माने नहीं, किंचन माने कुछ भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है और जो भगवान का भक्त है। ये भक्त शब्द जोड़ना होगा। अकिंचन का मतलब ऐसा कंगाल नहीं, ऐसा नहीं मान लिया जाएगा कि झोपड़पट्टी वाले सबसे प्रिय हैं भगवान के। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है भगवान के अतिरिक्त। भगवान ही जिसके धन है वो है अकिंचन, और ऐसा अकिंचन ही भगवान का धन है। अकिंचन वित्त, जैसे धन की रक्षा मनुष्य करता है सब तरह से, वैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और प्रेम करते हैं। यहां तो कभी कभी अपने रक्षा के लिए आदमी धन को खर्च कर देता है, लेकिन भगवान भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते हैं। अपना संचित धन भी मनुष्य यहां देखा जाता है कि वो दे देता है अपना शरीर ठीक करने के लिए, घर बनाने के लिए और कुछ काम के लिए। तो धन उतना प्रिय नहीं है जितना भगवान के लिए भक्त प्रिय है। अकिंचन भक्त ही जिनके वित्त है। तो भगवान इस तरह प्रेम करते हैं भक्तों से। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का अर्थ है कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह भाव है। अथवा कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं है, भगवान के लिए कुछ हो सकता है। कृष्ण के अतिरिक्त उसके उसका घर, उसका धन, उसके स्वजन और किसी के लिए नहीं है। घर उसके पास हो सकता है लेकिन वो कृष्ण के लिए है। उसके स्वजन हो सकते हैं, वो सब कृष्ण के। अपने लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है वो है अकिंचन। तो ऐसा भक्त भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूं। निवृत्त गुण वृत्त है, गुणों की वृत्तियां जिनसे निवृत्त हो जाती हैं, जिनकी कृपा से कोई भगवान की भक्ति करता है तो धर्म अर्थ और काम विषयक उसकी जो मनोवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि निवृत्ता गुण वृत्त हो धर्मार्थ काम विषय जस्मा तस्मय। जो भी व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है तो उसमें स्वर्ग की कामना नहीं रहती है, नहीं रह जाती है। संसारिक भोग, यहाँ के धन वैभव, ये इंद्रिय तृप्ति की कामना निवृत्त हो जाती है। इसको गुण वृत्ति कहते हैं। यह गुण का अर्थ इंद्रियां, मन। इंद्रियों में स्वाभाविक अभिलाषा रहती है संसार का भोग भोगने की, स्वर्ग जाने की। अब के तो लोगों में स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रहती है, विदेश जाने की इच्छा बनी रहती है। अब इतना डल हो गए कि इसी पृथ्वी का सुख चाहते हैं, स्वर्ग के विषय में ज्ञान ही नहीं। जैसे सुअर आदि को मल मूत्र के गड्ढे के अलावा और कोई ज्ञान न हो तो कामना क्या करेगा। यहाँ के किसी सुअर को थोड़े कामना है कि मैं राष्ट्रपति भवन देखूं, ये आगरा का ताजमहल देखो, से बहुत अच्छा कहीं रूम है या पार्क है घूमू, वो उसमें संतुष्ट है, मलालय में संतुष्ट है। इसी तरह मनुष्यों की दशा है, स्वर्ग का ज्ञान ही नहीं है इसलिए कामना नहीं उठ रही है। अब यहीं पर अपने इसी गड्ढे में अमेरिका रसिया इधर उधर घूमते रहे, जो घूमता रहता है सुअर। पहले के लोग धर्म के विषय में इच्छा करते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे। महाभारत युद्ध में जो वीर इकट्ठे हुए थे उनमें प्रायः हम वीरों के मन में था कि हमें स्वर्ग जाना है, जानते थे कि हम मरना निश्चित, अपना मरण स्वयं बताए थे। और कई लोगों ने कहा था कि हम तो मरने के लिए ही आए हैं, हमें स्वर्ग जाना है, इस नरक में रहकर क्या करेंगे। लेकिन आज के युग में लोगों को स्वर्ग का कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए कामना नहीं, कामना यही नरक में रहने की है। लेकिन भगवान की भक्ति करने पर यह गुणवृत्ति विषय भोग की वासना अपने आप निवृत्त हो जाएगी, निवृत्त गुणवृत्त है। तो ऐसा जिसका सहज प्रभाव है, अप्राकृत प्रभाव, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। अच्छा, श्री कृष्ण ऐसा क्यों है, जब उनके संपर्क में दूसरा आता है तो उसकी गुणवृत्ति निवृत्त हो जाती है, तो भगवान के लिए तो कहना ही नहीं, उनमें कैसे संसार की इच्छा होगी। क्यों नहीं इच्छा है भगवान की संसार के भोगों की, क्योंकि वे आत्मा राम है, अपने आप में रमते हैं, वो पूर्ण आनंद घन है, अपने आप में रमते हैं, उन्हें अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, न अन्य लोगों की आवश्यकता है। वो चाहते हैं तो अपने को ही राधा रानी के रूप में एक्सपैंड करते हैं, गोपियों के रूप में एक्सपैंड करते हैं, वृंदावन धाम के रूप में या भक्तों के रूप में अपने को विलसित करके और पुनः क्रीड़ा करते हैं। लेकिन कोई ऐसा मनुष्य आपने देखा होगा जो स्वयं पत्नी बन जाए, कोई है इधर, उसे पत्नी की कामना हो और स्वयं ही 16,000 बन जाए। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बनते हैं, स्वयं उनको आत्मा राम कहते, आत्मा तु राधिका तस्य, राधिका भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, मतलब उनका ही स्वरूप है, कृष्ण राधा रानी बने हुए हैं।
क्या आवाज आ रही है,
कोई प्रैक्टिस चल रहा है कि पूजा चल रही है। आत्मा राम, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, भगवान का स्वरूप चिन्मय है, आनंदमय है, और यह प्रकृति तो जड़ है, दुखमय है, मायामय है, अनंत कोटि जीव इस माया को भोग रहे हैं, लेकिन भगवान इसके तरफ तो दृष्टिपात भी नहीं करते, वो अपने आप में संतुष्ट है, इसको आत्मा राम कहते हैं। इसलिए शांताय, भगवान शांत है, उनमें राग आदि नहीं है, और जहां राग नहीं होता है तो क्रोध भी नहीं होता है, क्रोध राग के कारण उत्पन्न होता है, क्रोध को कामानुज कहा गया है, रागानुज। जहां आसक्ति होगी तो वहां क्रोध निश्चित आएगा। आपने देखा होगा जिन लोगों की अपने बेटा में खूब आसक्ति होती है वे हमेशा क्रोध में रहते हैं, जिसको आसक्ति नहीं होती है वो शांत रहता है, कोई बात नहीं। आसक्ति से क्रोध उत्पन्न होता है, राग से। उसका राग पूरा नहीं होता है तो क्रोध होता है, इसको अशांत कहते हैं। और इस संसार सुख के परे एक दूसरा सुख है, दिव्य सुख है भगवान के धाम में, उसे कैवल्य सुख कहते हैं। उसको देने का केवल अधिकार भगवान कृष्ण को है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ऐसे त्रिवर्ग दाता भी भगवान है, स्वर्ग या इस जगत का धन भोग सब कुछ वही देते हैं, लेकिन विशेष करके कैवल्य देने का तो और किसी को कोई अधिकार नहीं, इनडायरेक्ट में भी किसी का अधिकार नहीं। यहां तो कोई मनुष्य किसी देवता का भजन करता है तो देवता भी देते हैं, भगवान का दिया हुआ वो पहुंचा देते हैं, दे दे। तो आदमी समझता है कि ये देवता दे रहा है, देवता कुछ नहीं देते हैं। मयई व विहितान हितान, गीता में भगवान कहते हैं मेरी दी हुई वस्तु को देवता देते हैं, वो बनाए नहीं, भगवान बना करके सब दिए है उसी को दे देते। लेकिन मोक्ष सुख कैवल्य वैकुंठ देने में भगवान के लिए और कोई सहयोगिता की आवश्यकता नहीं, किसी के अधिकार में नहीं। कैवल्य पति है, मुक्ति का सुख देते हैं, मोक्ष देते हैं। तो ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम कर रही हूं, मतलब हमें हमेशा अकिंचन रखिए, हमें हमेशा गुण वृत्तियों से बचाए रखिए, अपने आप में रमाए रखिए, हम भी आपकी तरह शांत रहें। और हमें यह सुख नहीं चाहिए संसार का, आपके भक्ति का सुख चाहिए, यह भाव है। कैवल्य का अर्थ है भक्ति। मायावादियों के लिए भले निर्विशेष सुख हो, लेकिन भक्तों के लिए इस कैवल्य का अर्थ है केवला भक्ति, भगवान के साथ प्रीति का संबंध रहे, और मैं वो सुख चाहते हैं। तो कैवल्य पति जब कहा इन्होंने और आत्मा राम आदि, तो भगवान कहते हैं ननु देवकी पुत्र माम कथम एवं स्तौसी। बुआ जी, मैं तो माता देवकी का पुत्र हूं, इस तरह मेरी आप अति स्तुति क्यों कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मुझको आत्मा राम निवृत्त गुण वृत्ति कैवल्य पति तक कह रही हैं, वैकुंठ के शासक स्वामी, ऐसा क्यों कह रही हैं? तब कुंती महारानी कहते हैं कि मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। मन्ने त्वाम कालम, मैं जानती हूं कि आप काल हैं, जिनके बस में सारा जगत है वो है काल, और काल भगवान की इच्छा का नाम है। तो कुंती महारानी कहती हैं मैं आपको कालम मन्ने नतु देवकी पुत्रम, मैं आपको केवल देवकी पुत्र नहीं मानती, वैसे आप हैं देवकी पुत्र, देवकी नंदनाय च, परंतु आप काल हैं, ईश्वर। क्यों मैं आपको काल मानती हूं? इसलिए कि ईशानम, आप ईश्वर हैं, नियंतारम, संपूर्ण विश्व के नियामक। और इस युद्ध में भी, महाभारत युद्ध में मैं देख चुकी हूं कि आप जो करना चाहते थे वही होता था, जैसे कंट्रोल करना चाहते थे वैसे होता था। कई बार उन्होंने देखा है ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर देना, क्या क्या कंट्रोल करना, देवताओं को कंट्रोल करना, ब्रह्मा को, इंद्र को, शिव को, सबको भगवान ने कंट्रोल करके दिखाया था। बाणासुर से युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव बाणासुर का पक्ष लेकर आए कृष्ण से युद्ध करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक जिम्भास्त्र मार दिया, जम्हाई वाला अस्त्र, और शिव जी बेहोश ऐसे पड़े, और बेहोश पड़े थे। उसके बाद भगवान बाणासुर की सेना का वध करने लगे, आए थे बचाने के लिए, चले गए बेड पर शिव जी, इधर सारी सेना जब साफ हो गई तब आए। बाणासुर उनका भक्त था, और एक बार भगवान शिव नाच कर रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे थे, तो उनके पास ये मृदंग बजाने लगा, बहुत सुंदर मृदंगिक था, बाणासुर बलि महाराज का बड़ा बेटा था। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, तो उसको उन्होंने कितना बांह दिया था, 200 बांह दिया, 1000 बांह नहीं, 1000 तो सहस्र बाहु को दिया था, 1000 नहीं दिया था, कुछ कम दिया। एक हजार बाह तो भगवान दे सकते हैं, दत्तात्रेय भगवान दिए थे कार्तिक अर्जुन, 200 दिए थे शायद, 2000 नहीं पता नहीं, 2 माने बाह होता है, जो भी हो। तो अब भगवान शिव के नाच में वो अब कई 100 ढोलक लेकर एक साथ बजाता था, तो उसका बहुत बड़ा गर्व बढ़ गया, नहीं पहचान पाया भगवान के पौत्र को, अनिरुद्ध जी को कैद किया। तो सेना आई द्वारका से, भगवान आए, युद्ध होने लगा, तो भगवान शिव आए युद्ध में बाणासुर के तरफ से। तो भगवान अपने भक्त से क्यों युद्ध करें, उन्होंने बेहोश करने वाला बाण मार दिया शिव जी। क्यों युद्ध करें, उन्होंने बेहोश करने वाला बाण मार दिया शिव जी, बस जम्हाई लेने लगा, अब लड़े कहां से। जृंभा आती रहे उस बैल पर बैठ करके, वो झूमते रहे और इसी बीच में भगवान ने बाणासुर की सेना की सफाई कर दिया। जब मारने जा रहे तो शिव जी ने कहा कि मत मारिए, मैं इसको अमर होने का वर दे चुका हूं, ये किया हूं वो किया। भगवान ने भी कहा कि आप डरिए मत, मैं प्रहलाद को वर दिया हूं कि उसके कुल में जन्म लेने वाले किसी का वध नहीं करूंगा, मैं केवल इसकी भुजा काट रहा हूं। 4 भुजा छोड़ दिए भगवान, 2 ज्यादा ही छोड़े, 4 भुजा छोड़ दिए। आज भी बाणासुर की 4 भुजाएं हैं, और उस समय से वो भक्त हो गया। अगे एकादश स्कंद में भगवान उसका नाम बोले हैं कि कौन कौन लोग मेरे भक्त हो गए दैत्यों में, तो बाणासुर का भी नाम है, भक्त हो गए। तो सबके नियंता है कृष्ण, अनादि निधनम, काल की कोई शुरुआत नहीं है और काल का अंत नहीं है। इसी तरह भगवान अनादि मान आदिहीन है और अनिधनम, निधन भी नहीं। हम लोगों का जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो हमेशा आदि और अंत सोचा करती है किसी भी वस्तु का। इसलिए भगवान के विषय में भी जब यह सोचना चालू करेगी तो जरूर शुरुआत की कल्पना करेगी, कभी ना कभी तो भगवान हुए होंगे। अनादि काल की हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, और कभी ना कभी तो अंत हो जाएगा। लेकिन कृष्ण का यहां वर्णन कुंती महारानी कह रही है, अनादि निधनम, न आदि न निधनम जस्य तम। भगवान का निधन कभी नहीं है। सुन रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं कि कृष्ण को बहेलिया ने मार दिया, उन मूर्खों को यहां पढ़ना चाहिए ये बात, भगवान का कभी निधन नहीं होता और न कभी उनका बिगनिंग हुआ है, प्रारंभ हुआ है। विभुम परमेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, समम चरंतम सर्वत्र, और सब जगह भगवान सम है, भगवान विषम नहीं है। सर्वत्र का अर्थ कौरव आदि के प्रति भी, चाहे कोई हो, कृष्ण सबके प्रति सम भाव रखते हैं। जैसे हम काल देखते हैं, काल है बिल्कुल सम है। आज 7 तारीख है ना, है? आज 7 तारीख है, तो बॉम्बे में जितने लोग हैं सबके लिए 7 तारीख हो गया है ना, किसी के लिए 6 या किसी के लिए 5 या 8 नहीं हुआ, सबके लिए, सबके जीवन की आयु सेम कट रही है।
एक मिनट यदि हमारा कटा तो एक मिनट आपका कटा। इसको कहते हैं समता। काल सम है और काल है को नापने के लिए भगवान ने एक मीटर फिट किया है इस ब्रह्मांड में। काल ऐसे निर्विशेष वस्तु है, पता नहीं चलता है, लेकिन काल को नापने के लिए सूर्य को उन्होंने फिट किया है, इसीलिए उनको काल चक्र कहते हैं। जब मीटर में देखते हैं चक्र घूमता रहता है बिजली को नापने के लिए। बिजली ऐसे निर्विशेष है, कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने कितना खर्च किया क्या किया, तो मीटर में हमने देखा है एक चक्का घूमता रहता है। जस्या गया भ्रमति संभृतकाल चक्रो गोविंदमाद पुरुषम तमहम भजान। तो काल को नापने के लिए भगवान ने एक मीटर फिट किया है इस प्राकृत जगत में, एक मीटर, वो है सूरज। सूरज से ही पता लगता है कि 12 घंटा साफ हो गया, ये 12 घंटे की रात चल रही है, ये 6 महीना बीत गया या संवत्सर बीत गया, वर्ष बीत गया। और ब्रह्मा की आयु आदि का भी आकलन सब सूरज की गति से होता है, इसी मीटर से काल नापा जाता है। और हम लोगों का भी जो काल है, जीवन अवधि है, सूरज की चाल से नापा जाएगा। वर्ष में 2 आयन होते हैं, 6-6 महीने के, और एक संवत्सर होता है वर्ष में, मतलब वर्ष को ही संवत्सर कहते हैं। और कितना दिन जिएंगे, ज्यादा से ज्यादा 70-80 बस नाप लिए गए, टोटल करके बस बिल पा दे दिया ये मीटर नाप लिए गए, सब लोग नापे जा रहे है ना, कितना वर्ष के हुए। अंग्रेजी में बहुत सुंदर इसको कहते हैं, हाउ ओल्ड यू आर, तुम कितना बूढ़ा हो। तो जितनी आयु बीत गई उतना बूढ़े हम हो गए। हाउ ओल्ड यू आर, इस तरह से काल सबकी आयु को समाप्त कर रहा है। तो भगवान सम है कृष्ण। भूता नाम जन मिथह कलि, भगवान कहते हैं कि ननु पार्थ सारथे है कथम मम साम्यम, मैं पार्थ का सारथी हूं, रथ हाँक रहा हूं, पार्थ को विजयी बनाना चाहता हूं, तो मुझ में समता कहां है। आप कैसे कह रही हैं कि मैं सम हूं, मैं तो चाहता हूं अर्जुन की विजय हो, कौरव मारे जाएं, अर्जुन को राज्य मिले, तो मुझ में तो विषमता है। वो कहती है नहीं, जन मिथह कलि, आप केवल निमित्त मात्र हैं वास्तव में काल रूप से, और जीवों में आपस में कलह हो रहा है। आप सम हैं, जैसे सूरज है, सूरज सम भाव से विचरण कर रहा है, और यहां कलह या युद्ध जो भी होता है जीवों में होता है आपस में। जैसे मान लीजिए 2 पक्ष लड़ रहा है तो दोनों पक्ष को सूरज प्रकाश देता है, कोई भी हारे कोई भी जीते उसमें पक्षपात नहीं करता है। तो वास्तव में भगवान पक्षपाती नहीं है, ये कौरवों के भी उतने ही हितैषी हैं जितना अर्जुन के। भगवान यदि कभी चाहें कि हम पक्षपात करें तो उनके लिए संभव ही नहीं, वे सबके पिता हैं, सबके हृदय में हैं, सबके अंतर्जामी हैं। दुर्योधन के भी हृदय में है और युधिष्ठिर महाराज के भी हृदय में है। इस सत्य को कुंती महारानी जान गई है और महाभारत युद्ध इसका साफ दिग्दर्शन कराता है। यदि भगवान पक्ष करते अर्जुन का तो अर्जुन के संबंधी, उनके पुत्र, ये सब नहीं मारे जाते है ना। और अर्जुन आदि से पहले दुर्योधन ये सब वैकुंठ चले गए पहले। तो भगवान पक्षपात नहीं कि देखने में लगता था कि अरे ये तो पक्षपाती है, विषम है, ये है वो है, लेकिन कृष्ण विषम हो ही नहीं सकते, वे सबके परम सुहृद हैं। स्पेशली वे किसी के न सुहृद हैं न किसी के द्वेषी हैं। जैसे यहां हम लोग अपने परिवार के प्रति सौहार्द रखते हैं, मेरा परिवार, माई फैमिली, 10 आदमी के प्रति ममता भरी हुई है, लेकिन अन्य के प्रति कोई भाव नहीं,
क्योंकि हमारा ऐसा स्वरूप है कि हम सबके हितैषी हो भी नहीं सकते, हितैषिता करना चाहे तब भी नहीं करेंगे, और भगवान यदि किसी के द्रोही बनना चाहे तो बन ही नहीं सकते, वो विवश सबके हैं, वास्तव में सबके हृदय में है। जन्मिथह कली, भगवान के निमित्त से जीवों में कला होता है, अथवा एक इसका ये भी भाव है कि भगवान के विषय में मनुष्यों में आपस में झगड़ा होता है कि भगवान क्या है, कैसे है, ये है, वो है। भगवान सबके लिए सम है, ऐसा नहीं कि हम जो मानते हैं तो हमारे लिए भगवान भिन्न हो जाएंगे, तुम मानते हो तो भगवान तुम्हारे लिए भिन्न हो जाएंगे, कोई मानता है भगवान निराकार है तो उसके लिए भगवान निराकार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, सबके लिए सम। यहां विशेष करके कुरुक्षेत्र के युद्ध में या पांडवों के साथ जो भगवान की चेष्टाएं हैं उसके प्रति कुंती महारानी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप किसी के प्रति विषम नहीं है। इस जगत कह सकता है कि कुंती के पुत्रों का पक्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप किसी, आपके लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी आप कुछ भी कहो, लेकिन निग्रह और अनुग्रह रूप व्यवहार तो मुझ में प्रसिद्ध है, मेरे प्रसिद्ध है कि मैं किसी पर कृपा कर रहा हूं, अनुग्रह कर रहा हूं, अपना मान रहा हूं और किसी का विरोध कर रहा हूं, ये तो मेरा प्रसिद्ध है। जो बलराम जी तक कह दिए कि तुम तो विषम हो और मैं विषम नहीं हूं, मैं सम हूं, मैं तीर्थयात्रा में जा रहा हूं। कई लोगों ने भगवान कृष्ण पर एक कलंक लगाया, एक उतंक नाम के मुनि थे, महाभारत युद्ध के बाद भगवान जब अपने घर लौट रहे थे द्वारका, तो उतंक बीच में सांप देने के लिए खड़े हो गए, कहे कि यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, सारी हत्या का पाप इनको लगा, इसलिए मैं सांप दूंगा। सांप देने के लिए जब उठे तो भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, एकदम बदल गया दिमाग, समझ गरी ये तो भगवान है, ये है वो। तो पहले जानते थे कि कोई श्रेष्ठ जादव है, तेजस्वी है, ये है वो। कई लोग भगवान कृष्ण पर इस तरह का आक्षेप करते हैं, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, क्यों पक्षपात किए। जिसके लिए पक्षपात किए हैं वो व्यक्ति बता रहा है, कुंती महारानी बता रहे हैं कि आप पक्षपात नहीं किए। नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तवे हमानस्य नृणाम विडंबनम। हे भगवान, जब आप निग्रह अनुग्रह रूप नर विडंबन करते हैं, नृणाम विडंबनम, मनुष्यों के चेष्टाओं का अनुकरण करते हैं, तो उस समय आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपका चिकित्सित क्या है, आप चाहते क्या है, इसको कश्चित अपि न वेद, कोई नहीं जानता। न वेद कश्चित भगवान चिकित्सितम तवे हमानस्य निर्णाम विडंबनम, निर्णाम विडंबनम ई हमानस्य तव। जब आप मनुष्य जैसी लीला करते हैं बिल्कुल, तब आप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, इसको कश्चित अपि न वेद, कोई नहीं जानता है। क्यों मनुष्य जैसा करते हैं, निर्णाम विडंबनम शब्द है, विडंबनम का अर्थ श्रीधर स्वामी जी अनुकरणम किए, अनुकरण, हम लोग हिंदी में इसको नकल करना कहते हैं, नकल करना। मान लीजिए कोई आदमी अपने कमर पर हाथ रखकर चल रहा हो और टेढ़ी ग्रीवा किया हो, लटक लटक कर चलता हो, और दूसरा आदमी उसके देखा देखी उसको करे, तो इसको नकल कहेंगे। या विडंबनम का अर्थ भोजपुरी में बहुत सुंदर होता है, बिराना, चिढ़ाना, इसको बिराना हम लोग कहते हैं, विडंबनम। जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो हु बहुसी के जैसे बोलने से वो चिढ़ जाता है, बिराते हैं, उसको विडंबनम कह। जैसे कोई कमर पर हाथ रखा तो दूसरा भी रखा, तो वो रखने वाला पहला वो रंज हो जाएगा, क्यों हमारी नकल कर रहा है वो, इसको विडंबनम कहते हैं।
तो प्रश्न ये है कि भगवान जो यहाँ प्रकट होकर के नर लीला करते हैं तो मनुष्यों की नकल करते हैं क्या? नहीं, वो स्वयं ही नर हैं, वो नकल नहीं करेंगे। उनकी लीलाएं जो है उनकी लीलाएं हैं, किसी की नकल नहीं कर सकते। नकल मनुष्य ने किया है भगवान की। ऐसा नहीं कि भगवान अब मनुष्यों के बोली का, रोने का, गाने का, हंसने का, भागने का अनुकरण करेंगे। अगर ऐसा कहा जाए, इस अनुकरण का हूबहू वही अर्थ लिया जाए, तो इससे सिद्ध होगा तब भगवान कभी इस तरह नहीं करते हैं, आकर के मनुष्यों की नकल करते हैं। पर यह बात नहीं है। श्रीपद जीव गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी के इस वाक्य का बिल्कुल क्लियर अर्थ किया है। यह विडम्बनम का अर्थ वे करते हैं, भगवान ऐसा आचरण करते हैं कि मनुष्य भी लज्जित हो जाता है, ऐसा नहीं कर पाएगा, यह अर्थ है। ऐसी वे लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान नर का अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण तो उनका सारा जगत करता है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य अपार सर्वस्व, सभी मनुष्य तो भगवान के नकल करते हैं, तो उनके पीछे है। भगवान को सीखने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, कैसे रोता है। तो यहां अनुकरण शब्द पर विचार करना है कि भगवान किसी की नकल नहीं करते हैं। जो मनुष्य अवतार लेकर के वे यहां करते हैं वह उनकी नित्य लीला है। वो अपने धाम में इसी तरह रोते गाते हंसते हैं, मतलब उनका रोना भी आनंद की लीला है, लेकिन माँ यशोदा के भय से जैसे वे रो रहे हैं, जैसा आगे कुंती महारानी कहती है, तो वह किसी की नकल नहीं है, वह उनकी अपनी लीला है। इसी बात को कहते सामाम विमोह यति, मैं जानती हूं कि वो नकल नहीं है आपकी। आप जो माँ यशोदा के भय से रो रहे थे, नकल नहीं थी, वास्तव में आप रो रहे थे। ओरिजिनली भगवान में यह नर लीला विद्यमान है, क्योंकि नर बपु तहार स्वरूप जो परम भगवान है, स्वयं भगवान, वो नराकार है। नराकार को ही ये मूर्ख लोग निराकार करते हैं। तो नर के आकार में है, निराकार नहीं है। तो जब नर के आकार में है तो नर लीला तहार स्वरूप, नर बपु तहार स्वरूप, उनका स्वरूप है नर बपु, और इसलिए उनकी चेष्टाएं जो है वो मनुष्यों से मिलती जुलती हैं। अतः भगवान से प्रेम करने का यदि सहज संबंध किसी का है तो मनुष्यों का है। आप देखते हैं मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, गाय गाय से प्रेम करती है, सुअर सुअर से प्रेम करता है, पक्षी पक्षी से प्रेम करता है। तो भगवान वास्तव में एक नर है, हम लोगों का सहज संबंध उनके साथ मनुष्य शरीर में। ठीक है, इसी तरह के भगवान है, यद्यपि वे अनंत गुना सुंदर हैं, विलक्षण हैं, लेकिन हैं मनुष्य, हैं नर, उनका यह आकार है। यहां विडम्बनम का अर्थ है आविष्कृतम, भगवान अपने नित्य नर लीला को यहां प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? जीवों को अपनी लीला में शामिल करने के लिए। देखो हमारे साथ हो जाता है, उसके साथ मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, खेलता हूँ, खाता हूँ, माता का दूध भी पीता हूँ, हमारे ऊपर बच्चे घोड़ा बना करके चढ़ते हैं, हमसे प्रेम करने वाली प्रिया मान करती है, मैं मनाता हूँ। इस तरह से भगवान इसको प्रकट करके मनुष्यों को खींचना चाहते हैं अपने तरफ। नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तवे हमानस निर्णाम विडम्बनम। अच्छा, उसमें भी जब भगवान यहाँ पक्षपात जैसा करते हैं, अर्जुन का पक्षपात करते हैं, अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य को कह चुके हैं कुंती महारानी, यह है जीवों को अपने तरफ खींचना। लोग समझे कि अरे भगवान हमारा फेवर करेंगे, वे उदासीन नहीं है, वे हमारे हैं, जो उनको अपना माना तो उसको अपना माने। ये लीला करके दिखाते हैं। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने कृष्ण को चुना तो कृष्ण उनके सदा के लिए हो गए। ऐसे वो दुर्योधन के भी हैं, उन्होंने तो ऐसे स्पष्ट कहा था जब लोग सहायता लेने गए थे, तो भगवान ने कहा कि मैं दोनों के लिए बिल्कुल सम हूं, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ
मैं रहूंगा निहत्था बिना हथियार। चुन लो तो दुर्योधन शुरू से ही चुनना चाहता था सेना को, लेकिन अर्जुन को चांस दिया गया चुनने का, तो अर्जुन भी वही किए। अर्जुन ने चुन लिए कृष्ण को, दुर्योधन का मनोरथ पूरा हुआ। और भगवान क्या करें, सम है वास्तव में, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पर आकर के विषमता की लीला करते हैं। माता जशोदा का स्तन पीने के लिए रुठते हैं और रोने लगते हैं, ये क्यों? क्योंकि अनंत कोटि जीवों के हृदय में भगवान चाहते हैं तुम भी जशोदा जैसा भाव मेरे प्रति करो, मैं तुम्हारा स्तन पीऊंगा। भगवान के लीला का यही कारण, वो परिकरों को कितना आनंद है, तुम भी आओ नित्य लीला में प्रवेश करो। ये विज्ञापन देने के लिए भगवान आते हैं, यहाँ खेलते हैं दिखाते हैं। लेकिन जन साधारण के लिए कुंती महारानी कह रहे हैं कि नवेद कश्चित भगवान चिकित्सितम तवे हमान संणाम विडम्बन, कि आप क्यों मनुष्य की लीला कर रहे हैं, मनुष्य के कार्यों का अनुकरण कर रहे हैं, इसको कोई भी नहीं जान पाता, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य हो सकता है कि रात भर कानाफूसी करना, युधिष्ठिर महाराज से कैसे युद्ध होगा, कैसे जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रात भर पहरा देना अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके संकल्प से बनता है नष्ट हो सकता है, वे भगवान रात में युधिष्ठिर महाराज से साय साय करके बातचीत करते हैं, ये काम ऐसे होना चाहिए, कल सवेरे ये होना चाहिए, उसको यहाँ भेजना है, उसको ये करो करो ऐसे करो, क्या बात है, इस तरह का क्यों कर रहे हैं? न कश्चित वेद, कोई नहीं जानता है। ऐसे प्रकट लगता है कि उनका कोई द्वेषी है, कोई स्नेह का पात्र है, तो कुंती जी कहती हैं नहीं, नजस्य कश्चित दैतः अस्ति करहिचित द्वेष्यश्च, न जिनका कोई दैत है स्पेशली, कोई उनका प्रिय नहीं है, मतलब प्रिय इस माने में कि एक आदमी प्रिय है दूसरा नहीं, इस तरह का विचार नहीं है कृष्ण का कभी भी, उनका कोई दैत नहीं है, उनका कोई प्रिय नहीं है और उनका कोई द्वेष्य नहीं है। द्वेष्य का अर्थ है द्वेष का पात्र शत्रु, कोई उनका द्वेष्य नहीं है जिसे वे द्वेष करें। जस्मिन विषमा मतिर नृणाम, कृष्ण के विषय में मनुष्यों की मति विषम है, वे किसी के मित्र नहीं है, वे किसी के शत्रु नहीं, मनुष्यों की मति कृष्ण के विषय में विषमा है। जस्मिन नृणाम मति विषमा न तो कृष्ण विषम, कृष्ण विषम नहीं है, हम लोगों की मति विषम है उनके विषय में, और उनको कोई शत्रु मानता है तो वो शत्रु जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे जरासंध या कंस या दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन जरासंध और कंस के भी भगवान उतने ही हितैषी हैं जितना अर्जुन के, युधिष्ठिर के और कुंती के, यही तो भगवान की वास्तविक विशेषता है कि वे सबके अपने हैं, लेकिन उनके विषय में मनुष्यों की बुद्धि भिन्न भिन्न है। कोई कहता है वो ऐसा है ऐसा है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे दामाद को मार दिया, ये किया वो किया, अब क्या किया, हिरण्यकश्यपु मानता था कि वो हमारे भाई को मार दिया, वो विषम हो गया है, पहले सम था लेकिन देवताओं ने दौड़ धूप करके उसको कुछ खिला पिला करके और अपने पक्ष में कर लिया। तो जब वह अपना स्वभाव छोड़ दिया तो मारने योग्य है, मैं तो नहीं मारना चाहता था लेकिन जब अपना स्वभाव छोड़ दिया, जब इंद्र के बहकावे में आ रहा है तो अब उसको छोड़ूंगा नहीं, तस्य त्यक्त स्वभावस्य, भागवत में कहता है जब वो अपना स्वभाव छोड़ दिया तो अब जान से भी मारूंगा। लेकिन असुर भी जानते थे कि भगवान सम है, स्वयं हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि विष्णु पहले सम था, जब से उसकी आराधना देवता लोग किए तब से अब उनके लिए सुअर आदि का भी भेष बनाना चालू कर दिया, तो हमसे हमारे भाई से उसको क्या झगड़ा था, कुछ भी नहीं, इंद्र के बहकावे में आकर के मार दिया, लेकिन वो ये नहीं देखा कि उसका भाई जीवित है और ये क्या करेगा, तो अब मैं बता दूंगा और जितने विष्णु के भक्त हैं उनको भी अब बताऊंगा, और वास्तव में बता दिया वो धुरंधर था, वो तो भगवान का पार्षद था। वैकुंठ जगत का कोई भी परिकर इस जगत में आता है तो वह कम से कम ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली होता है, भगवान के साथ लीला करने के लिए आता। इसी तथ्य को कहा जाता है पर लोग समझते नहीं, कहते हैं कि वैकुंठ जगत से जो आता है वो ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा नहीं बनता है, वैकुंठ का एक साधारण जीव भी यहाँ के ब्रह्मा के बराबर होता है, ये अर्थ है। तो हिरण्यकश्यप द्वितीय ब्रह्मा के समान था वास्तव में, वो सृष्टि का सारा नियम बदल दिया था जो ब्रह्मा जी ने बनाया, एकदम उल्टा रिवर्स कर दिया था। एक नियम उसने भी बनाया था कि जो लोग यहाँ तप करते हैं दुख भोगते हैं तो परलोक में भी उनको दुख भोगाया जाएगा, उनको नरक में भेजा जाएगा, और जो यहाँ आनंद से सुख से रहते हैं भोग में उनको स्वर्ग भेजा जाएगा। जो कि ब्रह्मा जी का नियम इससे भिन्न था, जो यहाँ तप करेगा दुख भोगेगा उसको स्वर्ग भेजा जाएगा और जो भोग में पड़ा हुआ है उसको नरक भेजा जाएगा। लेकिन ये उलट दिया, जब हिरण्यकश्यप की सरकार बनी तो सारा नियम बदल इसने किया था, स्वयं भगवान को आना पड़ा इसका वध करने के लिए। तो हिरण्यकश्यप के उद्गारों से पता चलता है कि असुर समाज में भी भगवान कृष्ण के बारे में, विष्णु के विषय में जब चर्चा चलती थी तो लोग कहते थे पहले सौम था। प्रवचन चल रहा था हिरण्यकश्यप का, सूल उठाकर प्रवचन कर रहा था, जैसे आजकल लोग राइफल लेकर के कभी कभी प्रवचन करते हैं, वैसे सूल उठाकर प्रवचन कर रहा है। तो भगवान की क्षमता वैसे प्रसिद्ध है, कहीं भी देखिए लगता है जैसे अमृत मंथन में, समुद्र मंथन में भगवान ने पक्षपात किया, लेकिन वास्तव में वो पक्षपात नहीं था। जस्मिन विषम मतिर नृणाम, उनके विषय में मनुष्यों की मति विषम होती है, वे विषम नहीं। और आज भी कृष्ण गीता का उपदेश करके चले गए, सबको कह गए कि मन मना भव मत भक्तो मत द्याजी माम नमस्कुरु, लेकिन कोई भिन्न मना हो रहा है तो भगवान क्या करे, बताइए। किसी के लिए उन्होंने रिजर्व करके नहीं रखा गीता को कि केवल यही पढ़ेगा और यही मुझ में मन लगाए, कोई भी लगा सकता है, लेकिन उनके विषय में लोगों के भिन्न भिन्न मत है। कोई कहता है निराकार है तो कोई कहता है यह है, कोई कहता है वह है, इस वाक का कुछ भी अर्थ हो सकता है। मनुष्यों की मति एक समान नहीं है, इस बात को तो आप मानते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हम लोग भी इतने आदमी बैठे हैं लेकिन सबकी मति कुछ न कुछ भिन्न जरूर है, इसमें संदेह नहीं। जितने जीव हैं उनके मति के विकास क्रम में कुछ न कुछ अंतर जरूर है, किसी न किसी ओपिनियन का विरोध जरूर है। स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं लेकिन किसी न किसी बात में उनका खटपट रहता है जरूर, हो बहुत दिमाग एक बिंदु पर सेट हो जाए ऐसा नहीं होता। तो जब इतना इंटीमेट संबंध है, घनिष्ठ संबंध में भी जब मति थोड़ी विषम होती है, तो अनंत कोटि जीव है और उनकी मति विषम है और अपनी बुद्धि से भगवान के विषय में विचार करते हैं कृष्ण क्या है, तो अपना ओपिनियन उनका डिफर करेगा अन्य लोगों से, ये निश्चित है। तो कुंती महारानी यह संदेश दे रही है जगत को कि वास्तव में कृष्ण सबके हैं, सबके बंधु हैं, सर्वात्मा हैं, लेकिन लोग उनको पहचानते नहीं। अर्जुन का सौभाग्य था कि वो अपने सारथी के रूप में आपको पाया, लेकिन दुर्योधन भी आपको पा सकता था और भगवान देने में समर्थ थे। जैसा लोग कहा करते हैं कथा में कि जब विभीषण जी भगवान की शरण में आ रहे थे तो बानरों में खलबली मच गई, खास करके जो पॉलिटिक्स में रहे थे जैसे सुग्रीव जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा है कि उसको अरेस्ट करके रखा जाए, यहां से जा करके यहां का रिपोर्ट रावण को न दे, क्योंकि आवा मिलन दसानन भाई, कोई ये नहीं कहा कि विभीषण मिलने आए, रावण का भाई मिलने आया है, ये बात कहने में घृणा जैसी थी। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तो रावण का भाई आ रहा है। रावण का भाई तो भाई रावण जैसा ही होगा, है कि नहीं? तो सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े मित्र थे, क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि उसको यहीं पर अरेस्ट कर लिया जब यहीं बद्ध कर लिया, नहीं तो जाएगा तो यहाँ का सारा ब्यौरा हिसाब किताब पेश करेगा रावण के पास। वो आया है हमारा भेद लेने, भेद हमार लेन सठ आया, भेद लेने आया। कौन विश्वास कर सकता था कि रावण का भाई सज्जन हो सकता है कि नहीं? वो तो हनुमान जी गए वहां इनिशिएशन दे करके आए थे लंका में, किसी को इस बात का पता नहीं, हनुमान जी बताए नहीं थे। तुम्हारो मंत्र विभीषण मान, हनुमान जी चुपचाप सुन रहे थे कि हमारे चेला के विषय में यह बात चल रही है, लेकिन वो चुपचाप थे, जानते थे भगवान का स्वभाव की ये शरण में रखी। तो भगवान सुन लिए सुग्रीव जी की बात और बानरों की, तो भगवान ने कहा ये तो ठीक है, यदि भेद हमार लेन सठ आवा, यदि भेद लेने के लिए आया होगा तो बांध ये ताहि मोहि यस भावा, तो सुग्रीव जी की बात है, उसको बांध करके रखना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि जो सभीत आवा सर नाई तो रखियहुं ताहि प्राण की नाई, लेकिन ये पता लगाओ कि वो भय से मेरी शरण में आ रहा है कि भेद लेने आया है, पता लगा लो तुम लोग। अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आया होगा तो मैं जैसे अपने प्राण की रक्षा करता हूं ऐसे उसकी रक्षा करूंगा। और जहां तक राक्षसों की बात है तो जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हन ही निमिषमहते, राक्षसों से मुझे कोई भय नहीं, जितने राक्षस हैं लक्ष्मण आधा निमिष में सबको मार सकते हैं, एक विभीषण किस गिनती में, तो पता लगाओ, पता लगाओ जा करके। तो दूर से ही उन लोगों ने देखा कि वो दंडवत कर रहे हैं विभीषण जी, वो समझ गए सब लोग, और भगवान की बात सुनकर के जय जय बोलते हुए चले। तो जब बातचीत चल रही थी तो सुग्रीव जी कुछ रंज हो गए, कहे कि इसी तरह से कोई आवे और बस शरण दिया जाए तो खतरा हो सकता है। भगवान ने खतरा क्या है, भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मेरी शरण में आ रहा होगा डर करके तो मैं उसे लंका का राजा बनाऊंगा। सुग्रीव जी कह दिया और रावण आ जाएगा शरण में तब क्या करेंगे, विभीषण आ रहा है शरण में तो उसे लंका का राजा बनाएंगे और रावण आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो भगवान कहते हैं उसी तरह तो उसको अयोध्या का राजा बनाएंगे।